मेरे बहुत बहुत प्यारे दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज तारीख है 16 अगस्त 2016 और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में मित्रों, मैं स्वागत करता हूं विशेष रूप से अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं सिद्धार्थ प्री गौतम ग्वालियर मध्य प्रदेश से और तांबोली नसरीन अमीर सोलापुर महाराष्ट्र से। तो सिद्धार्थ और तांबोली, आप दोनों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तीन दिन के गैप के बाद मैं आज आपसे फिर रूबरू हो रहा हूं और मुझे यकीन है कि इन तीन दिनों ने आपको अतिरिक्त रूप से ताजगी से भरा होगा। आपने आजादी का जश्न भी मनाया होगा और एक सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के रूप में आजादी के जश्न मनाने का दौर एक ऐसा दौर भी होता है जब आप आजादी के फ्रूट्स यानी कि उसकी सफलताओं और विफलताओं के बारे में विचार भी करते हैं। तो मित्रों, अब एक छोटी सी सूचना से हम स्वतंत्रता के बाद के इस डेली ऑडियो गाइडेंस की शुरुआत करते हैं। और सूचना यह है कि मैंने आप लोगों से, याद होगा कि अर्ज किया था कि खासकर अभी प्री एग्जाम हुए हैं उसको देखते हुए, और डेली ऑडियो को ऑलमोस्ट 2.5 साल हो भी गए हैं। इस बीच में इसके पैटर्न में हम लोगों ने काफी कुछ परिवर्तन किया है जो जिसमें आप लोगों के सजेशन का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है। मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप सब अब नई सिचुएशन के हिसाब से या आपकी अपनी जरूरतों के हिसाब से आप सब अपने अपने सुझाव भेजें कि अब हमें डेली ऑडियो गाइडेंस में किस तरीके के बदलाव करने चाहिए, सुधार करने चाहिए जो आप लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी हो सके। मित्रों, देखिए कि क्या चीजें आपको दी जानी है वह तो हम लोगों को मालूम है, लेकिन हम लोगों को यह नहीं मालूम है कि उस चीज की आपको कितनी जरूरत है। मतलब दी जानी चाहिए आपके लिए, ये उपयोगी है ये हम जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन आप लोगों को तो उसकी जरूरत होनी चाहिए पहली बात। या हो सकता है कि आपको कुछ और भी जरूरत हो जो हमारे ध्यान में न हो। हम ये मान करके चल रहे हैं कि नहीं नहीं इसकी आपको जरूरत नहीं है, जबकि उसकी आपको जरूरत है। फिर यह भी है कि आपको किस रूप में उसकी जरूरत है, आपकी अपनी कैपेसिटी है, आप उसको कुक्ड कर पाएंगे कि नहीं, बदल पाएंगे कि नहीं, एग्जामिनेशन के पैटर्न पर ढाल पाएंगे या नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं सच पूछिए तो, जिनके हल, जिनके समाधान हमें सिर्फ आपके माध्यम से मिल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, इनफैक्ट आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने बहुत शानदार तरीके से अपने फीडबैक दिए हैं और मैं उनके नाम को पढ़कर और नीचे उनका परिचय देख करके अनुमान लगा सकता हूं कि उनमें से ज्यादा बड़ी संख्या उन स्टूडेंट्स की है जो फर्स्ट और सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे, इवन कि थर्ड बैच के स्टूडेंट रहे हैं और वो लंबे समय से डेली ऑडियो गाइडेंस को सुन रहे हैं। स्वाभाविक था, उनसे ये उम्मीद भी की जा रही थी कि वो ऐसा करेंगे और यदि वो ऐसा नहीं करते तो यह उनके लिए थोड़ी सी समझ लीजिए कि एक अलग निगेटिव बात होती। तो मुझे दोस्तों मुझे बहुत अच्छे डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में फीडबैक मिले हैं जिसमें नए स्टूडेंट भी शामिल हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे इनपुट दिए हैं। फ्रेंड्स, अब हम उन सारे इनपुट्स पर अभी विचार कर रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि हड़बड़ी में ही हम चीजों को बदल दें और पता लगा कि एक सप्ताह बाद, 10 दिन के बाद फिर बदल रहे हैं, फिर 10-15 दिन के बाद बदल रहे हैं। डेफिनेटली हमारी जो टीम है उस पर बहुत गंभीरता से विचार करेगी। उसमें टीम में ऐसे भी लोग हैं जो स्टूडेंट के रूप में एग्जाम भी दे रहे हैं, उसके आधार पर फिर हम अपने डेली ऑडियो गाइडेंस में जो भी संभव हो सकेगा, जो जरूरी होगा, वे परिवर्तन करेंगे। दोस्तों, मैंने संभव हो सकेगा का नाम इसलिए लिया है क्योंकि देखिए इसका एक फॉर्मेट है जो बेसिकली करंट कंटेंट पर बेस्ड है, न्यूज एंड न्यूज़पेपर पर बेस्ड है, ये इसकी सीमा है। और दूसरी समय की सीमा है, है ना, इन बिटवीन 32-34-35 मिनट्स, नॉट मोर देन 35, नॉट लेस देन 28-29, ये हमारी सीमाएं हैं। इन सीमाओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि आप लोगों के जो सजेशंस हैं उनमें से कितनों को एकोमोडेट किया जा सकता है और कितनों को थोड़ा सा बदला जा सकता है। लेकिन एक सूचना मैं आप लोगों को आज के बदलाव के संदर्भ में देना चाहूंगा, वो तुरंत हमने ये जो कदम उठाया है मित्रों, वो यह है कि अब जो लाइफ मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है उसको हम खत्म नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं। अब जो पहले लाइफ मैनेजमेंट AIR न्यूज के पहले आया करता था, अब वह AIR न्यूज और न्यूज पेपर्स की क्लिपिंग्स के बाद आएगा, यानी कि इसका जो इसकी जो प्लेसमेंट है या जो प्लेसिंग है कहना चाहिए लाइफ मैनेजमेंट की, वो आखिरी में होगी, और लाइफ मैनेजमेंट के बाद फिर जो ईमेल के तहत हम लोग जो थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं उसे रखा जाएगा। ईमेल का स्थान बिल्कुल पहले जैसा ही होगा। तो मित्रों यह परिवर्तन हम लोग आज से ही कर रहे हैं, इसलिए आज की जो शुरुआत हो रही है वो AIR न्यूज से हो रही है और जो अंत होगा वो ईमेल से पहले लाइफ मैनेजमेंट से होगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से ऐसे आप में से हैं जो लाइफ मैनेजमेंट को बेनतहा प्यार करते हैं, और अगर मैंने बिना इस सूचना के ही AIR न्यूज की एनालिसिस शुरू कर दी तो आप लोग में से बहुत से लोग निराश हो सकते हैं, और फिर हो सकता है कि निराशा में आप बीच में ही इसको सुनना बंद भी कर दें क्योंकि आप उसी के लिए सुन रहे थे, तो आपको निराश होने का बिल्कुल मौका नहीं दिया जा रहा है मित्रों। तो यदि इससे आप लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी होगी, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ को थोड़ी सी नाराजगी भी हो जाए क्योंकि आपके लिए वो प्रायोरिटी में सब सर्वोत्तम स्थान पर था, तो उसके लिए मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से क्षमा चाहूंगा, लेकिन कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आप भी इसके यूज टू हो जाएंगे। अभी आपको जो थोड़ी सी परेशानी होगी वो भी इसलिए क्योंकि आप उसके यूज टू हो चुके हैं। तो मित्रों इस सूचना के बाद लेट्स स्टार्ट, और नए पैटर्न पर हम जो अब करने जा रहे हैं उसमें अब हम लोग बात करते हैं AIR न्यूज के बारे में। फ्रेंड्स AIR न्यूज आपने सुनी है कल की, और आप जानते हैं कि इस बीच में शनिवार रविवार और सोमवार तीन दिनों की लगातार छुट्टियां रही हैं। मैं गस्टेड हॉलीडे की बात कर रहा हूं, नेशनल लेवल की छुट्टियों की बात कर रहा हूं, तो बट नेचुरल है कि घटनाक्रम इन बीच में नहीं के बराबर होते हैं, इसलिए आपने जो न्यूज में सुनी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज थी स्वाभाविक तौर पर वो हमारे प्रधानमंत्री के भाषण के आधार पर तैयार किए गए समाचार थे। मैंने आपको इससे पहले ही सतर्क कर दिया था कि जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण होगा वो बहुत महत्वपूर्ण आपको मानकर चलना चाहिए, भले ही उसमें आपको डायरेक्ट कंटेंट न मिले। दोस्तों मैंने इस बार जो प्री के पेपर हुए हैं जो 7 अगस्त को अभी आप या तो देकर आ रहे हैं या नहीं भी आपने दिए हैं तो आपके पास अब रिजल्ट पेपर मौजूद हैं, उनको देखने के बाद आपकी जो भी धारणाएं बन रही हों, लेकिन मैंने इस बीच में 3 दिनों तक इसका बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी की है, इसके बारे में मैं आगे चल करके आप लोगों से डिटेल में थोड़ी थोड़ी बातें करता रहूंगा, वो बात की बात है। लेकिन जो मैंने एक निष्कर्ष निकाला है मित्रों वो ये कि आपको इस बारे में सतर्क हो जाना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं है, कि आप बहुत ज्यादा कंटेंट की तलाश में मत रहें, आप कंटेंट के पीछे भागते हैं। जैसे मैंने प्रधानमंत्री के न्यूज को की एड्रेस को सुनने के बारे में कहा कि आप उनके संबोधन को राष्ट्र के नाम जो है उसे सुनिए, तो अगर आप उसमें कंटेंट की तलाश करेंगे, तथ्यों की तलाश करेंगे, जिसको बोलचाल की भाषा में आप कहते हैं मटेरियल, तो मटेरियल की तलाश करेंगे तो आपको निराश होना पड़ सकता है। और प्रधानमंत्री जी कोई वहां बहुत ही कोई किसी टॉपिक पर एकेडमिक लेक्चर नहीं दे रहे थे, वो राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, तो राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो वो बेसिकली विचारपूर्ण होगा, सिद्धांतपूर्ण होगा, यानी वो बेस बताएंगे, वो आपको तथ्य नहीं बताएंगे कि हमने इतने साल में इतने लोगों को ये कर दिया, आंकड़े नहीं गिनाएंगे आपको, है ना, संस्थाओं के नाम नहीं बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वो नहीं गिनाएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस किए गए हैं, तो आपको अपने प्रिपरेशन में थोड़ा सा ये बदलाव कर ही लेना चाहिए, और शायद इस बार के पेपर को देखकर आपको और ज्यादा मेरी इस बात पर भरोसा हो कि आप कंटेंट के पीछे बहुत ज्यादा मत भागिए। नो डाउट कंटेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मैं उसे अर्थहीन नहीं बता रहा हूं, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। तो मित्रों, अगर इस बात को आधार बनाकर हम प्रधानमंत्री जी के भाषण की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के हिसाब से थोड़ी एनालिसिस करें तो आपको मैं दो तीन चीजें सजेस्ट करना चाहूंगा। पहली बात तो देखिए कि उन्होंने जो पूरे के पूरे अपने भाषण में जो बात कही, और मैं खासकर न्यूज को आधार बना रहा हूं, है ना, मैंने भाषण को आधार नहीं बना रहा हूं, क्योंकि न्यूज में देखिए जो बातें ली जाती हैं वो एक तरीके से जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं उनको ली जाती है, जिसको वो राष्ट्र को बताना चाह रहे हैं। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लगा वो है जातिवाद और अस्पृश्यता के विरुद्ध जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि भारत अभी भी जातिवाद से उबर नहीं पाया है, और दूसरा अस्पृश्यता के खिलाफ उन्होंने एक मुहिम की बात कही है कि हमें इससे मुक्ति पाना है। आप इसकी बैकग्राउंड को आराम से समझ सकते हैं कि पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि दलितों पर कुछ अत्याचार की खबरें आ रही हैं, जिसमें फिर गौ संरक्षण वाला मामला भी जुड़ जाता है। तो इस रूप में ये चूंकि एक नेशनल डिबेट का थोड़ा सा हिस्सा भी बन चुका है, राष्ट्रीय एक तरीके से ये बहस में अभी जारी है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे में प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करके अपनी इस जो ज्वलंत समस्या है इसके प्रति उनका ध्यान आकर्षित करें और इस सिचुएशन को थोड़ा सा कमांड करें। तो उन्होंने जातिवाद और अस्पृश्यता के बारे में बातें कही। दोस्तों, मुझे लगता है कि सभी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को इस टॉपिक पर अच्छी तैयारी करनी चाहिए, और वैसे भी इस पर अच्छी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत जातिवाद के जकड़न में बहुत लंबे समय तक रहा है, इसकी मानसिकता बहुत जबरदस्त रूप से जाति से कसी बंधी हुई है। आप देखते हैं कि यहां तक कि हमारे जो चुनावी समीकरण होते हैं, जहां चाहे वो राज्यों के चुनाव हों या संसद के चुनाव हों, जाति बहुत ज्यादा मायने रखती है कि कहां कौन कैंडिडेट होगा। फिर जब चाहे कैबिनेट बने या जो दूसरे भी तंत्र होते हैं उनमें भी जाति को बहुत ज्यादा प्रधानता दी जाती है, और इसी को आप समझ सकते हैं कि हमने जो आरक्षण का आधार भी बनाया है वो जाति को बनाया है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को उसका आधार बनाया, पिछड़े वर्गों की भी जो पहचान की गई है वो जाति के आधार पर ही की गई है। ये बात अलग है कि एक अच्छी बात यह हुई कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस से उसमें फिर एक क्रीमी लेयर को उससे अलग कर दिया गया है। बावजूद इसके कि चीजें बहुत बदली हैं, ऐसा नहीं है कि भारत की मानसिकता अभी भी पुराने तरह के जातिवाद के जकड़न में बुरी तरह से फंसी हुई है, ऐसा नहीं है। चीजें पॉजिटिव भी हो रही हैं, सकारात्मक परिवर्तन समाज में दिखाई दे रहे हैं। आप मेट्रोस में देखिए तो जाति का जो तंत्र है वो काफी विखंडित हो चुका है। आप जब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो नहीं पूछते हैं कि आपका शेफ किस जाति का है या जो बैरा आपको सर्व कर रहा है वो किस जाति का है। तो ये चीजें टूटी हैं, लेकिन अभी भी जो गांव हैं हमारे वो अभी जातिवाद कि काफी जकड़न में हैं, और इस तरह की खबरें आपको अखबारों में भी पढ़ने को मिलती होंगी। तो मित्रों, ये जो उनका आह्वान है ये बहुत मौजू है, मतलब एक जरूरी आह्वान है। तो आपको बकायदे जो इंडियन जो साइकी है या कह लीजिए जो इथॉस है, जो हमारा मानसिक जो चिंतन है, मानसिक बुनावट है, उस संदर्भ में भी होना चाहिए। जो सामाजिक स्वरूप है उस बारे में भी होना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान, जो संवैधानिक प्रावधान इसके विरुद्ध किए गए हैं, इससे निपटने के लिए किए गए हैं, उस पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि जो अस्पृश्यता है इसको अलग से हमारे मूल अधिकारों के अंतर्गत मेंशन किया गया है। अगर आप मूल अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार पढ़ेंगे, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, तो स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अस्पृश्यता को अलग से मेंशन किया गया है कि इसको इससे मुक्ति पाना है। आप देखेंगे स्वतंत्रता या समता के अधिकार के अंतर्गत अलग से मेंशन किया गया, मेरे समझ से शायद अनुच्छेद 17 है। तो मित्रों, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इससे भारत जल्दी से जल्दी मुक्ति पाए, क्योंकि राष्ट्रीय एकता का एक अहम हिस्सा भी है और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा का हमने संकल्प किया है। तो इन सारे कुछ पहलुओं को ध्यान में रखकर के इस टॉपिक पर आपको अपनी अच्छी पकड़ बनानी चाहिए। न्यूज में जो दूसरी बात थी मित्रों, वो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को लेकर के थी। हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरह की शब्दावली बहुत अच्छे अच्छे यूज करते हैं। आप देखेंगे चाहे वो विदेशी संबंधों की बात हो या राष्ट्रीय मुद्दे हो, वो बहुत अच्छे इस तरह के शब्द कॉइन्स लेकर आते हैं। तो उन्होंने कहा रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इसकी भी जरूरत है, सुधार की जरूरत है, और प्रदर्शन मतलब वो दिखावा नहीं, मतलब अब सरकार जैसे कहती है लेस गवर्नमेंट मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो अब सरकार को करके दिखाना है, चीजों को करके दिखाना है, ट्रांसफार्म मतलब एक बहुत बड़े बदलाव की भी जरूरत है। तो आपके लिए अच्छा समय है कि आप इन तीनों शब्दों को आधार बना करके अपने दिमाग के घोड़े को थोड़ा दौड़ाएं कि क्या कहना चाह रहे हैं, रिफॉर्म से उनका क्या मतलब, किन क्षेत्रों में वो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, परफॉर्म किस तरह के परफॉर्म की बात कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट अभी तक परफॉर्म नहीं कर रही थी, क्या अभी तक कोई रिफॉर्म नहीं हुए हैं, और ट्रांसफॉर्म, तो फिर रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में अंतर क्या है, क्योंकि जब आप रिफॉर्म करते हैं तो चीज सुधरती हैं, चीजें सुधर रही हैं तो चीजें बदल ही रही हैं, और ट्रांसफॉर्म का तो मतलब ही बदलाव से है, तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। तो इस पर भी आप अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए तकलीफ देने का आदेश दे सकते हैं, बशर्ते कि आप ये तकलीफ उठाना चाहें। इसके बाद जो तीसरा शब्द था मित्रों, स्वराज से सुराज की बात उन्होंने कही थी कि हमें स्वराज्य तो मिल गया है, हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन अब सुराज की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि इस पर भी आप लोग थोड़ा विचार करें कि सुराज का क्या मतलब है और स्वराज्य का क्या मतलब है, और अगर हम अभी तक सुराज की सिचुएशन में नहीं आए हैं तो क्यों नहीं आए हैं, कैसे आ सकते हैं, इस पर भी थोड़ा विचार आपको करना चाहिए। मैं जानता हूं दोस्तों कि ये जो मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क जैसा दे रहा हूं ये ज्यादातर लोगों को अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कि बस एक हम सुने और बात खत्म हो जाए, लेकिन काश कि आपके सिर्फ सुनने से आप सक्सेस हो चुके होते या हो सकते, तब मैं बिल्कुल यही कहता दोस्तों, जब तक आप अपने दिमाग को एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक सच पूछिए तो प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेज पर आपको वो सफलता मिलनी संदेहास्पद रहेगी जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे तो आप मुझे इसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं कि सर हमें फालतू के होमवर्क दे देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे फीडबैक मिले हैं कि स्टूडेंट्स को जब मैं इस तरह के कभी होमवर्क देने की बात करता हूं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं अब क्या करूं मित्रों, मुझे भी देना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं इसको तभी टाल सकता था जबकि सच पूछिए तो दिया जाना जरूरी नहीं होता, लेकिन मुझे जब लगता है कि ये जरूरी है तो बताइए मैं भी क्या कर सकता हूं, मेरा रोल तो एक डॉक्टर की तरह हो जाता है जिसे अगर लगता है कि इलाज के लिए कड़वी दवाई दी ही जानी है तो कड़वी दवाई देना उसकी मजबूरी हो जाती है। तो मित्रों ये स्वतंत्रता दिवस पर आधारित जो न्यूज थी उसके बारे में मैंने आपको बात बताई, और न्यूज में एक छोटी सी और न्यूज थी दोस्तों, वो साइबर प्रयोगशाला को लेकर के है कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ 30 समथिंग साइबर प्रयोगशालाएं खोली हैं और उसको 51 तक पहुंचाने की उनका लक्ष्य है, और इसका उद्देश्य खासकर साइबर क्राइम जो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं उसको मिनिमाइज किया जा सके, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखा जा सके। तो ये आपको थोड़ा सा एक कंटेंट के तौर पर इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको मालूम होना चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है। मुझे ये नहीं मालूम है कि ये महाराष्ट्र सरकार इस तरह का कदम उठाने वाले पहला स्टेट है या इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साइबर क्राइम आपके सिलेबस में है भी, तो उपाय के रूप में यह आपके दिमाग में एक बात हो सकती है कि ऐसे भी उपाय किए जा सकते हैं। तो दोस्तों न्यूज में तो बस इतना ही है, कोई खास नहीं है। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर पर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भोपाल में न्यूज़पेपर्स नहीं आए हैं, मुझे नहीं मालूम कि चूंकि मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो पूरा देश है तो अलग अलग स्टेट में क्या स्थिति है, हो सकता है कि वहां न्यूज़पेपर्स आए हों छपे हों, लेकिन चूंकि भोपाल में आज न्यूज़पेपर्स मुझे नहीं मिले हैं तो इसीलिए मैंने अब जो 14 तारीख के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनको अपना आधार बनाया है, क्योंकि 14 तारीख जो मंडे था उस दिन कोई ऑडियो नहीं आया था 15 अगस्त को, तो मैंने सोचा कि उनको भी देखना चाहिए ताकि आपके न्यूज़पेपर्स के साथ कंटिन्यूटी बनी रहे। तो उसमें दोस्तों जो एक दो क्लिपिंग्स हैं खासकर मैं उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग है दैनिक भास्कर में जो आर जगन्नाथन जी का लिखा हुआ लेख है, और मैं आपको बता चुका हूं कि आर जगन्नाथन जी के लेख अगर आपको कहीं भी किसी भी अखबार में पढ़ने को मिलते हैं तो आप उन्हें पढ़ें। ज्यादातर उनके लेख बड़े प्रैक्टिकल होते हैं और मतलब सिविल सर्विस के काम के होते हैं, जो स्टूडेंट जिन्हें पढ़ करके समझ सकता है। इस बार का जो उनका आर्टिकल है वो खासकर बैंकों को लेकर के है। आपको मालूम है कि बैंकों के ऊपर, खासकर जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, काफी बड़ा संकट आ गया है। और वो संकट ये है कि उनका 10% तक एनपीए हो गया है। मतलब एक ऐसा लोन जिसके वापस मिलने की संभावना नहीं है, मतलब वो डूबत खाते में 10% आ गया है। और उसको लेकर के बैंकों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। चूंकि पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, ठीक है, सरकार अपनी तरफ से फंड दे दे करके इन्हें जीवित तो रखेगी, क्योंकि तो अर्थव्यवस्था के हृदय होते हैं। अगर हृदय धड़कना बंद कर गया तो फिर क्या स्थिति होगी। लेकिन इसमें इन्होंने कुछ चीजें बहुत अच्छी बताई हैं कि अब बैंकों को किस तरीके से अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाना पड़ेगा, और यदि वो कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं लाएंगे तो यह एक बहुत ही एक संकट की स्थिति होगी। स्पेशली इन्होंने जो मेंशन किया है मित्रों, वो दो तीन सेक्टर में किया है। नंबर एक की टेक्नोलॉजी बेस्ड, कि अब जो बैंक आ रहे हैं वो इतने ज्यादा फुल फ्लेज टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं कि अगर सार्वजनिक बैंक अपने आप को उस टेक्नोलॉजी में नहीं ढालेंगे तो फिर कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे इसमें इन्होंने मेंशन किया, और आपको ये मालूम भी होना चाहिए कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई, ये एक ऐप है, डाउनलोड आप कर लेंगे, और अगर आपने अपने स्मार्टफोन पर इसे डाउनलोड कर लिया तो फिर आप मतलब समझ लीजिए कि आपको बैंक जाने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। चाहे आपको किसी दुकान का भुगतान करना हो, टैक्सी का भुगतान करना हो, जो भी है, आप सिर्फ इस यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के आधार पर कर सकेंगे। ना आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत है, ना डेबिट कार्ड की जरूरत है, ना चेक की जरूरत है। सोचिए, यहां तक कि आप एक बार बैंक में आ जाकर के खाता खोल आएंगे, बात खत्म हो जाएगी, फिर आपको कभी बैंक जाने की ही जरूरत नहीं होगी। और आगे उन्होंने लिखा है कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि एक एजेंट ही आपके घर पर आए और आपका खाता खोल करके चला जाए, फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि बैंक कभी जाए, और आपको यह भी पता हो कि आपका बैंक कैसा है और कहां है। जबकि सार्वजनिक बैंक में अभी ओवर स्टाफिंग है। आप देखते हैं कि बीच बीच में किस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की जो यूनियन होती है वो हड़ताल कर देती है। असली में उनका हड़ताल खासकर इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ ही है, क्योंकि बैंक में ओवर स्टाफिंग है, और अगर उनको हटाया गया तो उनकी नौकरी का सवाल है, वो अपनी जगह सही है, और नहीं हटाया गया तो ये बैंक की अपनी सेहत का सवाल है, उनके अपने एग्जिस्टेंस का सवाल है, ये अपनी जगह सही है। तो इस तरह के संकट में हमारे बैंक फंसे हुए हैं। दूसरा उन्होंने जो बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है मित्रों, वो है कि अब आपने सुना है सिविल सर्विस में कुछ इस तरह के पूछे भी जाते हैं, पेमेंट बैंक आ गया है, स्मॉल बैंक आ गया है, मुद्रा बैंक वगैरह के बारे में आप सुन रहे हैं। अब होगा क्या, अब इन बैंकों की रीच बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये गांव-गांव तक पहुंच जाएंगे, भले मोबाइल के जरिए ही पहुंचे, और ये गांव के जो छोटी छोटी बचत होते हैं ये इनको अपने पास लेना शुरू कर देंगे। तो बचत तो ये अपने पास ले लेंगे, कर्ज इनमें से बहुत से हैं जिनको देना नहीं है, तो बचत ये सोख कर लेंगे। तो अभी तक जो पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास जो बचत आती थी वो बचत कम हो जाएगी, और बैंक की यही तो यही जीवन होता है कि उनके पास कितना ज्यादा अमाउंट है लोगों का पेमेंट, तभी वो बैंक सरवाइव कर सकते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा संकट होगा। अब आप डाक को ही देख लीजिए, पेमेंट बैंक के लिए किया गया है, पोस्ट ऑफिस को 1.5 लाख उसकी शाखाएं हैं पोस्ट ऑफिस की। ये जब पेमेंट बैंक स्मॉल बैंक के रूप में काम करना शुरू कर देंगे तो होगा क्या, गांव का आदमी वहीं पैसा जमा कर देगा तो बैंकों के पास पैसा आना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से अब बैंकों को, पब्लिक सेक्टर के बैंकों को इस चुनौती को भी झेलने के लिए तैयार होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आप इसे देख लेंगे। और इसके बाद दो तीन और प्रेस क्लिपिंग्स हैं मित्रों, ज्यादा प्रेस क्लिपिंग्स नहीं है, वो आप बड़े आराम से उसे देख सकते हैं। तो मित्रों ये प्रेस न्यूज़पेपर से था। अब मैं आता हूं, एक थोड़ा सा वक्त मैं देना चाहूंगा लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से को। आज मित्रों आप लाइफ मैनेजमेंट में थोड़ा सा ऑड सा महसूस कर रहे होंगे, पता नहीं आप ना भी करें, लेकिन मैं तो थोड़ा सा ऑड सा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बड़ा सतर्क होकर के चीजों को करना पड़ रहा है। एक फ्लो बन जाता है ना, एक आदत बन जाती है, जैसे पानी बहने लगता है तो फिर वो उसी बिना जाने अनजाने उसी में ही से बहता रहता है, लेकिन जब आप उसके रास्ते को मोड़ते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से मैं भी थोड़ा सा महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि कोई बात नहीं, अगर हम किसी अच्छे के लिए परिवर्तन कर रहे हैं और अच्छे की उम्मीद के लिए कह लीजिए कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। तो मित्रों आज के लाइफ मैनेजमेंट में चूंकि वक्त ज्यादा नहीं है तो मैं थोड़ी सी बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा, और खासकर मैं पिछले ही अपने एक प्रश्न को या एक तर्क को उठाना चाहूंगा, और वो था कि गिरे हुए फूलों को ईश्वर पर चढ़ाना। मैंने आप लोगों को फिर से एक होमवर्क देकर के थोड़ा सा परेशान किया था कि एक किसी आप जैसे ही किसी मित्र ने किसी जब बुजुर्ग से बात की तो वो बड़े नाराज हो गए और कहे कि अगर फूल नाली में गिर जाएगा तो क्या हम उसे भी चढ़ाएंगे। तो मैंने कहा इसे आप अपने अपने ढंग से सोचिए। मुझे बेहद खुशी है मित्रों कि इसके बारे में आप लोगों ने सोचा है, मुझे वाकई में बेहद खुशी है, और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि आप लोगों ने केवल सोचा ही नहीं है बल्कि बहुत अच्छे तर्क भी दिए हैं, जिसे मैं कहूंगा प्रबल तर्क दिए हैं, अकाट्य तर्क दिए हैं। और यही सच पूछे तो दिमाग की सबसे बड़ी ताकत होती है, दिमाग की सबसे बड़ी ताकत होती है कि आप अपने पक्ष में कितने अकाट्य, कितने शक्तिशाली और स्पष्ट और गहरे तर्क दे सकते हैं। मित्रों सबसे पहली बात आप याद रखिए कि जो भी कोई कुछ भी कहता है वह उसे कहने का अधिकार है, प्लीज डोंट डिनाई दैट। बुजुर्ग ने जो भी बात कही उनको अपने कहने का अधिकार है, और आप हम सबको उनके कहने के इस अधिकार का पूरा सम्मान करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि यदि वो हमसे बिल्कुल उल्टी बात ही कह रहा हो कोई भी और हम उससे एकदम सहमत ना हो या हमें उटपटांगी वो बात लग रही हो तो उत्तेजित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, शांत तरीके से आप बात सुनिए क्योंकि उसका अधिकार है, उनकी अपनी अप्रोच है, उनके विचारों की अपनी दुनिया है, उनकी अपनी परवरिश है, जीने का अपना ढंग है, अपनी शैली है, वहां से वो विचार पैदा हुआ है। तो हम उत्तेजित न हो, अपना बैलेंस बनाए रखें, यह सबसे बड़ी शर्त होती है तार्किक रूप से सोचने की। और जैसे ही आप बैलेंस खोएंगे, आप मान करके चलिए कि रास्ता आप भटक गए हैं, रास्ता भटक गए हैं मित्रों। जैसे मैं एक दो उदाहरण देता हूं कि जिन बुजुर्ग ने यह बात कही कि क्या नाली में गिर जाएगा, नाली भी रहती है जमीन पर, तो क्या हम वहां के फूल चढ़ाएं। अब आप देखें कि वो रास्ता भटक गए, बात यह थी ही नहीं, और इस बात को बहुत अच्छे से पूजा राजपूत जो है उन्होंने उठाया भी है कि सर आपने तो ये बात कही ही नहीं थी तो ये बात आ कहां से गई। सच बात यह है कि मैंने ये बात कही ही नहीं थी, मैंने तो ये कहा था कि जमीन पर जो गिरे हुए फूल है हम उसे अपवित्र क्यों समझते हैं, बस इसी को मैंने अपने तर्क से बात कही थी, तो नाली की तो बात थी ही नहीं। और आप ये बताइए कि कहां आप गार्डन में गए हैं और गार्डन के बीच में नालियां बह रही हैं, फूल कहां गिरेंगे, फूल तो गार्डन में ही गिरेंगे और कहां गिरेंगे, और वहां तो नालियां होंगी नहीं, अगर होंगी भी तो उसको बंद कर दिया जाएगा या गार्डन कहीं बना लिया जाएगा, तो नाली की कोई बात ही नहीं थी। और मजेदार बात यह है मित्रों कि जो ये नाली की बात आई और जब मैंने स्टूडेंट से इस पर विचार करने के लिए कहा तो मेरे पास जो फीडबैक आए हैं वो नाली के आए हैं, मतलब उसमें फिर से फूल और जमीन गायब हैं। कहते हैं कि बिल्कुल सर ये तो कोई तर्क की बात नहीं हुई कि कोई फूल नाली में गिरे और उसे हम धोकर के भगवान को चढ़ाएं। मैं तर्क कुतर्क की बात नहीं कह रहा हूं, है ना, मैं भटकने की बात कह रहा हूं। अक्सर मित्रों हम भटक जाते हैं, केंद्र को छोड़ देते हैं और पेरीफेरी में घूमने लगते हैं, क्योंकि पेरीफेरी के बारे में अपनी बात कहना आसान होता है, केंद्र को पकड़ करके और सामने वाले की बातों को काटना कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। तो दोस्तों तो ये मैं देख रहा हूं कि कई फीडबैक हैं जो अब नाली पर बात होने लगी जबकि तर्क कहीं है ही नहीं। मित्रों ये बात मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मीडिया में जो आप सुनते हैं, आमिर खान ने फलाना कुछ कह दिया, शोभा डे ने फलाना कुछ कह दिया, तो हमारे शशि थरूर जी ने फलाना, इस तरह के आप विवाद सुनते हैं ना, वो सच पूछे तो उनका अगर आप ओरिजिनल पढ़ें तो आप दंग रह जाएंगे कि अरे ये तो बात कुछ ऐसी थी ही नहीं, तो ये चीज कहां से आ गई। ऐसे ही होता है मित्रों की एक छोटी सी चीज जो हमको सूट करती है, याद रखिए इस बात पर विशेष रूप से गौर कीजिए, जो हमको सूट करती है हम उसे पकड़ लेते हैं और मेन को भूल जाते हैं, मुख्य जो है उसको भूल जाते हैं, हमारा सारा उत्तर का कचरा हो जाता है। और यही हम सिविल सर्विस में भी करते हैं, और सच पूछे तो यही हमसे प्री एग्जाम में भी हो जाता है, और सही पूछे तो यही हमसे जिंदगी में भी होता है, यही होता है मित्रों। समस्याओं का जब हम समाधान करने के लिए लगते हैं तो पता लगा कि समस्या की जड़ को भूल गए और नाली को पकड़ लिया है हमने। अरे कितनी नालियां होंगी, होंगी भी तो, हम तो बगीचे के वो फूल जो जमीन पर गिरे हुए हैं उनको न उन बगीचे के वो फूल जो पेड़ पर खिले हुए हैं उनको न तोड़ करके जो फूल जमीन पर गिर गए हैं उनसे ईश्वर का श्रृंगार करने की बात कर रहे हैं, उसमें नाली है ही नहीं। और मित्रों अगर हम नाली की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हो सकता है, यस ये अपने आप में इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट हो सकता है कि क्या नाली में गिरे हुए फूलों को भी चढ़ाया जा सकता है। इसके लिए आप अपने तर्क दीजिए। अगर मान लीजिए कि कुछ नाली बह रही है और उसके किनारे फूलों के पौधे लगे हुए हैं तो जो फूलों के पौधों में जो रस पहुंच रहा है उस नाली का ही तो रस है, तो क्या वो फूलों में नहीं पहुंचा होगा? या आप कह लीजिए कि नाली में जो कीड़े किलमिला रहे हैं भगवान, क्या उनको भगवान नहीं, क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं कि मैं तो सब जगह हूं, तो नाली में भी क्या भगवान नहीं है? मतलब उसमें फिर आपके पास देने के लिए अलग तरीके के तर्क होंगे, वहां भी तर्क हैं, पक्ष में भी हैं विपक्ष में भी हैं, लेकिन तर्क अलग हो जाएंगे। तो मित्रों इस बात पर हमेशा गौर कीजिए। दूसरी चीज, हमेशा अपने विचारों को बदलने की कोशिश में लगे रहिए। जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वही सच है, ये तो आपका अभी का सच है क्योंकि आपको इसी तरह से बताया गया है, आपने चीजों को इसी नजरिए से देखा गया है, वो सच है। लेकिन जब आप तार्किक रूप से उसको सोचना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपके उन विचारों में परिवर्तन आए। और याद रखिए कि विचारों में परिवर्तन आना ही कहीं ना कहीं विकास का सूचक होता है, बशर्ते कि वो परिवर्तन सकारात्मक दिशा में। तो मित्रों आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं अब फूलों वाली बात को यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन मुझे खुशी है कि आप लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लिया और इंटरेस्ट लेने के बाद आप लोगों ने मुझे सूचित भी किया। मित्रों इसी तरह से चीजों के बारे में बड़े तार्किक नजरिए से सोचते रहिए। तो दोस्तों अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर जो ईमेल का चरण है। बहुत से मेल है मित्रों, चूंकि तीन दिन के मेल हैं, संख्या बहुत ज्यादा है, तो सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उनमें से कुछ मित्रों के नाम यहां ले रहा हूं, वो हैं अभिषेक सोनी गोंडा उत्तर प्रदेश से, अभिषेक त्रिपाठी, शशांक सिंह गोला गोकरण नाथ खेरी से, उत्कर्ष दीप पटना से, रजत बोलपुर से, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, रमाशंकर राय गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से, अभिषेक कुमार भागलपुर से, पूजा राजपूत प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, रोहित सोहित अहमद स्मृत्य कौशिक दिल्ली से, शैंकी कोट द्वारा उत्तराखंड से, उमेश बालीराम तालेकर महाराष्ट्र से, रोहित मिश्रा मुंबई से, सूरज राजपूत, साधना यादव लखनऊ से, अरुण अवस्थी और रितेश नायक पिथौरा छत्तीसगढ़ से, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों एक बार फिर से मैं आप लोगों के बहुत ही अच्छे इनपुट के लिए धन्यवाद देता हूं, एकेडमी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने उसमें रुचि दिखाई है, और आप लोगों की ये जो रुचि है, ये जो एक्टिवनेस है, ये एक तरीके से डेली ऑडियो गाइडेंस के प्रति आप लोगों के कहीं ना कहीं प्रेम को शो करती है। और मुझे सच पूछे तो मित्रों अगर आप क्षमा करें तो मुझे जो एक्टिव लिसनर्स हैं उनसे बेहद बेइंतहा मोहब्बत होती है, क्योंकि वो एक्टिव लिसनर्स हैं, क्योंकि उन्हीं में आप बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं, उन्हीं को आप कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। पैसिव जो लिसनर हैं उनको आप कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते। और मैं चाहता हूं कि मैं जो एकेडमी जो इसमें इतना वक्त लगा रही है वो आप लोगों को कुछ प्रोवाइड करे, आप लोगों के जीवन में आप लोगों की सफलता में कुछ ऐड करे। और सच पूछे तो आप लोगों की ये जो इस तरह की जो एक्टिवनेस है यह कहीं ना कहीं मुझे इसके प्रति विश्वास दिलाती है कि आप सब ऐड करने के लिए तैयार हैं। तो मित्रों एक बार फिर से मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस यही समाप्त करने की इजाजत भी चाहता हूं। नमस्कार।